मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। अरुण कुमार सिंह, निदेशक, मनोविज्ञान शोध एवं सेवा संस्थान एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना। दो बातें, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां छात्रों एवं शिक्षकों की उन जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया है जिनका संबंध मूलतः शोध प्रणालियों एवं शोध कार्य विधियों से संबंधित है। शोध एक ऐसा पत्र है जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा तीनों ही शास्त्र में अनिवार्य विषय के रूप में करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। इसमें हिंदी भाषा में एक उत्तम पुस्तक की कमी बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित हो जाने से मुझे विश्वास है कि यह कमी दूर हो जाएगी। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। यह पुस्तक 20 अध्यायों में बांटकर लिखी गई है। इसमें मापन के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट्स, कॉमा परीक्षण निर्माण के सिद्धांतों, अंडर ब्रैकेट प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट क्लोज, तथा कुछ प्रमुख सांख्यिकी संप्रत्ययों, अंडर ब्रैकेट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, ब्रैकेट क्लोज की समीक्षा रिव्यू का वर्णन सरलतम एवं सुगम भाषा में किया गया है। पूर्ण विराम, इससे छात्र एवं शिक्षक काफ़ी लाभान्वित होंगे। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। इस पुस्तक के लिखने में मुझे जिन पुस्तकों एवं शोध ग्रंथों की मदद मिली है, कॉमा उन सब के लेखक के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे कुछ सहकर्मियों, कॉलीग्स ने भी पांडुलिपि को अंशतः पढ़कर उसमें सुझाव दिया है। पूर्ण विराम, मैं इनके प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं उन शिष्यों एवं शिष्याओं के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पांडुलिपि के कुछ अध्याय को पढ़ा और अपनी कठिनाइयों से मुझे अवगत कराया। पूर्ण विराम, इस संदर्भ में सुश्री अंडर ब्रैकेट डॉक्टर अल्पना सेन गुप्ता, मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय का सहयोग प्रशंसनीय है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। मैं मोतीलाल बनारसी दास के पार्टनर श्री जे पी जैन जी तथा पटना शाखा के प्रबंधक श्री कमला शंकर सिंह का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग से यह पुस्तक समय पर आपके समक्ष आ पाई। पूर्ण विराम, अरुण कुमार सिंह। अध्याय एक, वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान एवं वैज्ञानिक विधि का स्वरूप, अंडर ब्रैकेट नेचर ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा ऐसे व्यवहार परक विज्ञान, अंडर ब्रैकेट बिहेवियरल साइंस, हैं जिनमें वैज्ञानिक विधियों, साइंटिफिक मेथड्स, ब्रैकेट क्लोज, द्वारा ही अनेकों तरह के शोध कार्य, अंडर ब्रैकेट रिसर्च वर्क, ब्रैकेट क्लोज किए जाते हैं। पूर्ण विराम, ऐसी विधियों द्वारा किए गए शोध को वैज्ञानिक शोध, अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है। पूर्ण विराम, वैज्ञानिक शोध क्या है, इस बात पर प्रकाश डालने के पहले दो बातों पर विचार कर लेना अति अनिवार्य है। डैश अ, विज्ञान किसे कहते हैं, अंडर ब्रैकेट व्हाट इज साइंस, ब, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, अंडर ब्रैकेट व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, ब्रैकेट क्लोज। सामान्यतः विज्ञान के अर्थ को दो दृष्टिकोण से समझा जाता है, डैश स्थैतिक दृष्टिकोण, अंडर ब्रैकेट स्टैटिक व्यू, तथा गत्यात्मक दृष्टिकोण, अंडर ब्रैकेट डायनेमिक व्यू, ब्रैकेट क्लोज। स्थैतिक दृष्टिकोण के अनुसार विज्ञान से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं, एक्टिविटीज से होता है जिनके द्वारा क्रमबद्ध सूचनाओं अंडर ब्रैकेट सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट क्लोज को एकत्रित करने में सक्रिय योगदान होता है। पूर्णविराम, इस अर्थ में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों की खोज करना तथा वर्तमान तथ्यों की सूची में उन्हें जोड़ना होता है। पूर्णविराम, इस अर्थ में वैज्ञानिक वर्तमान सिद्धांतों थियोरीज ब्रैकेट क्लोज कॉमा प्रकल्पनाओं हाइपोथेसिस तथा नियमों अंडर ब्रैकेट लॉज के ज्ञान भंडार अंडर ब्रैकेट बॉडी ऑफ नॉलेज ब्रैकेट क्लोज में नए नए तथ्यों की खोज कर उस भंडार को विस्तृत करता है। गत्यात्मक दृष्टिकोण डायनेमिक व्यू के अनुसार विज्ञान से तात्पर्य मूलतः किसी वैज्ञानिक द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जो भविष्य में किए जाने वाले शोधों अंडर ब्रैकेट रिसर्चेस ब्रैकेट क्लोज तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक थ्योरी के लिए आधार का निर्माण करते हैं। गत्यात्मक दृष्टिकोण डायनेमिक व्यू ऑफ स्वानुभाविक दृष्टिकोण अंडर ब्रैकेट हियरिस्टिक व्यू भी कहा जाता है। गत्यात्मक दृष्टिकोण में एक वैज्ञानिक समस्या समाधान के नए नए तरीकों पर अधिक बल डालता है न कि ज्ञान भंडार अंडर ब्रैकेट बॉडी ऑफ नॉलेज ब्रैकेट क्लोज को बढ़ाने के लिए नए नए तथ्यों की मात्र खोज पर। विज्ञान का मूल उद्देश्य अंडर ब्रैकेट पर्पस ब्रैकेट क्लोज प्राकृतिक घटनाओं अंडर ब्रैकेट नेचुरल फेनोमिना ब्रैकेट क्लोज की व्याख्या करना होता है। इस तरह की व्याख्या को वैज्ञानिक सिद्धांत अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक थ्योरी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। अब दूसरे प्रश्न पर विचार किया जाए, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड ब्रैकेट क्लोज। सामान्यतः वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से होता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अंडर ब्रैकेट साइंटिस्ट ब्रैकेट क्लोज अपने विषय वस्तु अंडर ब्रैकेट सब्जेक्ट मैटर ब्रैकेट क्लोज का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करके एक वैध सामान्यीकरण अंडर ब्रैकेट वैलिड जनरलाइजेशन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। पूर्णविराम, इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक विधि अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक मेथड ब्रैकेट क्लोज में मूलतः दो तरह की विशेषताएं होती हैं। डैश एक, वैज्ञानिक विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति अंडर ब्रैकेट कंट्रोल्ड कंडीशन ब्रैकेट क्लोज होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस विधि में चरों वेरिएबल्स का एक निश्चित सेट होता है जिसमें से कुछ को नियंत्रित कर रखा जाता है, उनके मापन मेजरमेंट्स की प्रविधियां निश्चित होती हैं तथा एक वैज्ञानिक प्रेक्षण अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज दो, वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता यह भी होती है कि इसके द्वारा प्राप्त परिणाम का विस्तृत सामान्यीकरण अंडर ब्रैकेट ब्रॉड जनरलाइजेशन ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वैज्ञानिक द्वारा समस्या के समाधान के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है उसे उन सभी लोगों पर भी लागू किया जाता है जो उस अध्ययन में शामिल तो नहीं किए गए थे परंतु जिनकी विशेषताएं उन व्यक्तियों से मिलती जुलती हैं जिन्हें वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में शामिल किया था। पैराग्राफ चेंज, किसी भी वैज्ञानिक विधि के कुछ सोपान अंडर ब्रैकेट स्टेप्स होते हैं ब्रैकेट क्लोज। ऐसे प्रमुख सोपान अंडर ब्रैकेट स्टेप्स ब्रैकेट क्लोज निम्नांकित पांच हैं। एक, समस्या की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम हाइफन, किसी भी वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले यह समस्या की निश्चित पहचान की जाती है। समस्या की पहचान कर उसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की एक आलोचनात्मक समीक्षा करता है। दो, प्राकल्पना का निर्माण फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस डैश, वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहचान के बाद एक प्रकल्पना हाइपोथेसिस तैयार की जाती है समस्या के संभावित समाधान को ही वैज्ञानिक भाषा में प्राकल्पना हाइपोथेसिस कहा जाता है। उद्विराम 3 निगमनात्मक चिंतन द्वारा प्राकल्पना से एक आशय पर पहुंचना अंडर ब्रैकेट अराइविंग एट इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग ब्रैकेट क्लोज हाइफन वैज्ञानिक विधि के तीसरे कदम में निगमनात्मक चिंतन अंडर ब्रैकेट डिडक्टिव रीजनिंग ब्रैकेट क्लोज द्वारा प्रस्तावित प्राकल्पना अंडर ब्रैकेट सजेस्टेड हाइपोथेसिस से कुछ निश्चित आशय अंडर ब्रैकेट इम्प्लीकेशन पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। यहाँ यह तय किया जाता है कि यदि प्राकल्पना सच हुई तो किन तथ्यों का प्रेक्षण किया जाएगा तथा किन किन तथ्यों का प्रेक्षण नहीं किया जाएगा। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज 4 सबूतों का संग्रह एवं विश्लेषण अंडर ब्रैकेट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस। इस चरण में प्रस्तावित प्राकल्पना सजेस्टेड हाइपोथेसिस से निगमित आशय डिड्यूस्ड इम्प्लीकेशन की जांच विभिन्न स्रोतों से सबूत संग्रह करके तथा उसका विश्लेषण करके किया जाता है। पूर्णविराम 5 प्राकल्पना की जांच वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस वैज्ञानिक विधि के इस चरण में चतुर्थ सोपान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्राकल्पना की जांच की जाती है। यदि प्राकल्पना जांच के आधार पर खरा सिद्ध होती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु यदि जांच के आधार पर यह पता चलता है कि प्राकल्पना हाइपोथेसिस में कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करने के ख्याल से उसमें परिमार्जन मॉडिफिकेशंस किया जाता है। पैराग्राफ चेंज इस तरह से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक विधि के कुछ निश्चित सोपान हैं। कोई विधि भी तभी ही वैज्ञानिक कही जाएगी जब वह उपयुक्त सोपानों से होकर गुजरती हो। विज्ञान की पूर्व कल्पनाएँ अंडर ब्रैकेट एजम्पशंस ऑफ साइंस प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस जैसे भौतिक विज्ञान अंडर ब्रैकेट फिजिक्स रसायन अंडर ब्रैकेट केमिस्ट्री ब्रैकेट क्लोज जीव विज्ञान बायोलॉजी ब्रैकेट क्लोज के समान ही मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान के समान अपने विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करता है। पूर्णविराम मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और चूंकि मानव व्यवहार न केवल जटिल बल्कि रहस्यमय अंडर ब्रैकेट मिस्टीरियस भी दिखता है, अतः ऐसे परिस्थिति में इसका अध्ययन सामान्यतः कठिन होता है। परंतु विज्ञान अंडर ब्रैकेट साइंस कुछ ऐसी निश्चित पूर्व कल्पना ब्रैकेट एजम्पशंस करता है जिसके अनुसार चलने पर व्यक्ति के व्यवहार को एक नियमित एवं सतत तंत्र अंडर ब्रैकेट कंसिस्टेंट सिस्टम ब्रैकेट कोस्ट के रूप में समझना आसान हो जाता है। पूर्णविराम विज्ञान की पूर्व कल्पनाएँ अंडर ब्रैकेट एजम्पशंस ब्रैकेट क्लोज निम्नांकित है। एफन एक प्रकृति विधि सम्मत होता है, नेचर इज लॉफुल। प्राकृतिक विज्ञानों के समान मनोविज्ञानिक भी एक पूर्व कल्पना करते हैं, ये प्रकृति के कुछ नियम लॉज हैं जो जीवित प्राणियों के व्यवहार को शासित ब्रैकेट गवर्न करते हैं। व्यवहार प्राकृतिक नियमों नेचुरल लॉज से नियमित अंडर ब्रैकेट रेगुलेट होते हैं, फलतः किसी भी व्यवहार की व्याख्या विशिष्ट कारक ब्रैकेट कॉज ब्रैकेट क्लोज एवं प्रभाव इफेक्ट के रूप में संभव है। यद्यपि यह सही है कि कुछ स्वाभाविक नियम ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से सभी तरह के प्राणियों अंडर ब्रैकेट स्पीशीज के समूहों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ विशिष्ट नियम अंडर ब्रैकेट स्पेक्टिक लॉ ब्रैकेट क्लोज ऐसे बनाए गए हैं जो समूह के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने से संबंधित नियम ऐसे हैं जो मनुष्य पर लागू नहीं होते, परंतु जो मनोवैज्ञानिक कुत्तों के लैंगिक व्यवहार अंडर ब्रैकेट सेक्सुअल बिहेवियर ब्रैकेट क्लोज का अध्ययन करते हैं या मनुष्य के भाषा विकास (ब्रैकेट लैंग्वेज डेवलपमेंट) का अध्ययन करते हैं, तो वे प्रकृति के ऐसे नियम का अध्ययन कर रहे होते हैं जो एक समूह के सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। पैराग्राफ चेंज। हालांकि कुछ मनोविज्ञानों का यह मत है कि यह सोचना कि एक शोध अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रकृति का नियम का परख करता है ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अध्ययन का फोकस बिंदु काफ़ी सीमित रहता है। इनके अनुसार इन नियमों का खोज (ब्रैकेट डिस्कवरी) तथा का निर्णायक (ब्रैकेट कंक्लूसिव) परिभाषा देना एक कठिन एवं जटिल प्रक्रिया होती है। (ब्रैकेट इतना ही नहीं, शोधकर्ता को एक ही व्यवहार के अध्ययन के परस्पर विरोधी व्याख्या एवं परिणाम प्राप्त होते हैं, अतः व्यवहार के छोटे से छोटे पहलू के अध्ययन पर सर्वसहमति (ब्रैकेट कंसेंसस) (ब्रैकेट क्लोज) बनाने में काफी सारा श्रम एवं धन लगता है। इन सभी परिसीमाओं के बावजूद हम लोग यह पूर्व कल्पना करके चलते हैं कि सभी तरह के सदृश परिणामों को समन्वित करना संभव है, ताकि प्रकृति के नियमों को सही ढंग से समझा जा सके। पैराग्राफ चेंज। दो, व्यवहार का स्वरूप नियतिवादी होता है। द नेचर ऑफ बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक (ब्रैकेट क्लोज) मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूर्व कल्पना यह की जाती है कि प्राणी का व्यवहार कुछ कार्यों से निर्धारित होता है। इसके शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राणी का व्यवहार व्यक्ति के अपने स्वतंत्र इच्छा (ब्रैकेट फ्री विल) या पसंदगी (ब्रैकेट चॉइस) से प्रभावित ना होकर कुछ पूर्वानुमेय (ब्रैकेट प्रेडिक्टेबल) पहचानने योग्य (आइडेंटिफाइबल) तथा स्वाभाविक कारकों (ब्रैकेट नेचुरल कॉज) से निर्धारित होता है। मनोविज्ञान की पूर्व कल्पना यह होती है कि व्यक्ति कोई विशेष व्यक्तित्वशील गुणों की अभिव्यक्ति अन्य स्वतंत्र इच्छा से नहीं करता और न ही अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार व्यक्ति किसी परिस्थिति में व्यवहार करता है। व्यवहार का नियम व्यक्ति को कुछ खास तरह का गुण (ब्रैकेट एट्रीब्यूट) दिखलाने तथा किसी खास परिस्थिति में किसी खास ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि व्यक्तित्व विभिन्नता (इंडिविजुअल डिफरेंस) के कारण एक ही परिस्थिति में कोई भी दो व्यक्ति समान ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है, फिर भी मनोवैज्ञानिक यह पूर्व कल्पना करते हैं कि प्रकृति के कुछ ऐसे नियम (लॉज) जो प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नता को शासित गवन करता है। तीन, प्रकृति बोधगम्य होता है। नेचर इज अंडरस्टैंडेबल। विज्ञान की तीसरी पूर्व कल्पना यह होती है कि प्रकृति के नियम (लॉज) बोधगम्य अंडरस्टैंडेबल होते हैं। प्रकृति कितना भी रहस्यमय या जटिल क्यों न दिखे, हम लोग यह पूर्व कल्पना करते हैं कि इसे समझा जा सकता है। यह अनुभव है कि हम लोग अभी तक प्रकृति के कुछ पहलुओं को नहीं समझ सके हों, परंतु फिर भी यह पूर्व कल्पना करते हैं कि अंततः हम लोग उसे समझ लेंगे। सचमुच में इस तरह की पूर्व कल्पना से व्यक्ति प्रकृति के बारे में जो भी सीखता है वह दो ढंग से प्रभावित होता है। पहला, हम लोग मात्र विश्वास के आधार पर किसी कथन को स्वीकार नहीं करते हैं। विश्वास से मतलब किसी भी कथन (ब्रैकेट स्टेटमेंट्स) को बिना प्रश्न किए या सबूत (ब्रैकेट प्रूफ) (ब्रैकेट क्लोज) के ही उसके सच्चाई को स्वीकार कर लेने से होता है। दूसरा, कोई भी वैज्ञानिक किसी ज्ञात तथ्य के भीतर तार्किक (ब्रैकेट लॉजिकली) (ब्रैकेट क्लोज) एवं तर्कसंगत (रैशनैलिटी) (ब्रैकेट) ढंग से किसी कथन की अभिव्यक्ति कर सकता है, उसे समझा जा सकता है। अगर एक ही कथन का विभिन्न अंश आपस में परस्पर विरोधी (कॉन्ट्राडिक्टरी) लगे या अगर दो कथन एक दूसरे का विरोधी दिखे तो तार्किक रूप से यह निश्चित रूप से संभव हो पाता है कि उसमें से किसी एक को ही सही ठहराया जाए। पूर्णविराम, स्पष्ट हुआ कि विज्ञान की कुछ पूर्व कल्पनाएँ अंडर ब्रैकेट एजम्पशंस ब्रैकेट क्लोज होती है। इन पूर्व कल्पनाओं का एक आशय अंडर ब्रैकेट इम्प्लीकेशन ब्रैकेट क्लोज स्पष्टता यह है कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, जैसे चमत्कार या करामात अंडर ब्रैकेट मिराकल ब्रैकेट क्लोज एक ऐसा विषय है जिसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि चमत्कार प्रकृति के नियमों को नहीं मानता है। निष्कर्ष तब यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यवहार विधिसम्मत अंडर ब्रैकेट लॉफुल नियतिवादी अंडर ब्रैकेट डिटर्मिनिस्टिक तथा बोधगम्य अंडरस्टैंडेबल हो। पैराग्राफ चेंज। वैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च का महत्व व्यवहार परक विज्ञान बिहेवियरल साइंस जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र एवं शिक्षा में सर्वाधिक है। किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध सिस्टमैटिक एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रयासी वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च कहलाता है। वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च में शोधकर्ता एक नियंत्रित एवं आनुभाविक एम्पिरिकल अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करता है। अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक निर्भर योग्य डिपेंडेबल होते हैं। कर्लिंगर 1986 ने वैज्ञानिक शोध की परिभाषा देते हुए कहा है, (double inverted comma) स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित आनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। (double inverted comma) पैराग्राफ चेंज। बेस्ट एंड कहन 1992 ब्रैकेट क्लोज ने भी वैज्ञानिक शोध अंडर ब्रैकेट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ ऐसा ही कहा है। उन्हीं के शब्दों में (double inverted comma) वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण (controlled observation) का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख (recording) एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास नियम का परिणाम या कारण हो सकती हैं को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। (double inverted comma) पैराग्राफ चेंज। इन दोनों परिभाषाओं पर यदि गौर किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च के स्वरूप नेचर का सबसे मूल तथ्य यह है कि इसमें एक नियंत्रित प्रेक्षण (controlled observation) होता है और इस तरह के प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कोई नया सिद्धांत थियरी या नियम (principle) विकसित किया जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च की कुछ और भी विशेषताएं (characteristics) हैं जिनसे इसके स्वरूप नेचर पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। ऐसी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। (1) वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एवं क्रमबद्ध सिस्टमैटिक प्रयास किया जाता है। 2) इस तरह का शोध दृश्य अनुभवों ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। अतः वैज्ञानिक शोध का आधार आनुभाविक सबूत (empirical) एविडेंस होता है। ऐसे शोध में शोधकर्ता रिसर्चर उन तथ्यों एवं नियमों पर विचार नहीं करता है जिन्हें वस्तुनिष्ठ ढंग से ऑब्जेक्टिवली प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है। 3. शोध में घटनाओं या तथ्यों का प्रेक्षण प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन तथा परिशुद्ध वर्णन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन किया जाता है। शोधकर्ता विश्वसनीय एवं वैध वैलिड परीक्षण टेस्ट का प्रयोग कर आंकड़ों डाटा का संग्रह करता है तथा उनका सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अंडर ब्रैकेट क्लोज करके प्राप्त परिणाम रिजल्ट्स का परिशुद्ध एक्यूरेट वैज्ञानिक व्याख्या करता है। 4. वैज्ञानिक शोध में किसी नियम सिद्धांत एवं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन के विकास पर बल डाल जाता है। ऐसे नियम सिद्धांत एवं सामान्यीकरण द्वारा उन तथ्यों एवं चरों वेरिएबल्स का के बारे में पूर्व कथन प्रिडिक्शन करने में काफ़ी मदद मिलती है जिनका अध्ययन किया जाने वाला है। 5. शोध की कार्यविधि प्रोसीजर क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा तार्किक लॉजिकल होती है। शोधकर्ता इस बात की भरपूर कोशिश करता है कि कार्यविधि प्रोसीजर में किसी प्रकार का पक्षपात बायस या कोई पूर्व धारणा प्रेजुडिस न घुसने पाए। इसके लिए शोधकर्ता एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ डिजाइन तैयार करता है और उसके अनुसार चरों वेरिएबल्स की अंतरक्रियाओं इंटरैक्शन का अध्ययन कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। 6. शोध में धैर्य पेशेंस की भी जरूरत होती है। एक अच्छा वैज्ञानिक शोधकर्ता कभी भी चरों वेरिएबल्स का चयन जल्दीबाजी में नहीं करता है, वह बहुत सोच विचार कर इन चरों का चयन करता है, धैर्यपूर्वक उनसे संबंध आंकड़ों का संग्रहण कलेक्शन करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। 7. शोध में स्विज्ञता एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता को यह पूरा पता होता है कि संबंधित समस्या पर और लोग किस किस ढंग के शोध कर चुके हैं तथा जो आंकड़ों का वह संग्रहण करने वाला है उसे पूरा समझने एवं विश्लेषण करने की तकनीकी क्षमता उसके पास है। 8. शोध में प्रतिकृति रेप्लिकेशन का गुण होता है। एक वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च का स्वरूप ऐसा होता है कि यदि किसी शोधकर्ता को अन्य शोधकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर या प्रयोग किए गए डिजाइन पर किसी प्रकार का कोई शक है तो दूसरा शोधकर्ता पहले शोधकर्ता की पूरे कार्यविधि को प्रोसीजर को पुनः दोहरा कर प्राप्त निष्कर्ष की वैधता की जांच कर लेता है। 9. शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम रिजल्ट्स एवं निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत रिपोर्ट करता है ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह अस्पष्टता आदि से ग्रसित न होना पड़े। वह शोध की समस्या प्रॉब्लम प्रकल्पना हाइपोथेसिस डिजाइन आदि को एक विशेष प्रारूप फॉर्मेट में उपस्थित करता है जिससे उसके शोध के वैज्ञानिक स्वरूप की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। 10. कभी कभी वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च में साहस की भी अत्यंत ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक इस बात का साक्षी है कि महत्वपूर्ण खोज एवं अनुसंधान राजनैतिक तथा धार्मिक विरोध के बीच ही किए गए, जैसे कोपरनिकस ने अपने वैज्ञानिक शोध के आधार पर जब सबसे पहले यह बतलाया कि सौर्यमंडल सोलर सिस्टम का आधार पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है तो तमाम धार्मिक नेताओं ने उनकी इस खोज का जोरदार विरोध एवं भत्सनापूर्ण खंडन किया था। इसके बावजूद भी कोपरनिकस अपने निष्कर्ष पर साहसपूर्वक डटे रहे। पैराग्राफ चेंज, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं पर ध्यानपूर्वक गौर करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च एवं एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अभाव में किसी विषय सब्जेक्ट की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। वैज्ञानिक शोध के दोष, अंडर ब्रैकेट फ्लॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यद्यपि वैज्ञानिक शोध कई दृष्टिकोणों से परिपूर्ण होता है, फिर भी इसमें कुछ दोष फ्लॉज सम्मिलित होते हैं। किसी भी व्यवहार के अध्ययन में चूंकि कई तरह के डिज़ाइन बन सकते हैं और प्रकृति भी काफ़ी जटिल होती है, अतः शोधकर्ताओं द्वारा त्रुटि किए जाने की संभावना सूचनाओं को इकट्ठा करते समय या उसकी व्याख्या करते समय काफ़ी होता है। फलतः एक वैज्ञानिक के रूप में हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि जो हम जानते हैं या सोचते हैं वह दो बातों पर आधारित होता है, सबूत एविडेंसेस जिन पर हम ध्यान देते हैं, और दूसरा ब उन सबूतों की व्याख्या हम किस तरह से करते हैं। उन दोनों बातों से संबंध दोष फ्लॉज निम्नांकित हैं। वैज्ञानिक सबूत से संबंध दोष फ्लॉज रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंस। किसी भी आदर्श शोध परिस्थिति में व्यक्ति का प्रेक्षण पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एंड ब्रैकेट अनुभव एम्पेरिकल क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तथा नियंत्रित कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उसके मापन एवं प्रेक्षण पूर्णतः यथार्थ एक्यूरेट हो। परंतु सच्चाई यह है कि कोई भी अध्ययन आदर्श नहीं होता है। नो स्टडी इज आइडल। सचमुच में कोई भी अध्ययन निश्चित रूप से थोड़ा कम या ज़्यादा वस्तुनिष्ठ हो सकता है, कम या ज़्यादा क्रमबद्ध हो सकता है, या ज़्यादा अनुभवजन्य हो सकता है। चार ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि सीमा वैज्ञानिक सबूतों साइंटिफिक एविडेंसेस के लिए कोई भी अध्ययन कसौटियों क्राइटेरिया को करता है। यदि कोई अध्ययन इन कसौटियों पर जितना ही कम खरा उतरता है उसमें दोष फ्लॉज भी उतने ही अधिक होता है। ऐसे ही कसौटियों एवं उनसे संबंधित दोष का वर्णन इस प्रकार है। एक, अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप, नेचर ऑफ बिहेवियर टू बी स्टडीड। अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप ही कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ अनुभवजन्य क्रमबद्ध एवं नियंत्रित तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जैसे जब हम चिंतन थिंकिंग का अध्ययन करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसमें सही ढंग से जानने के लिए हमें कुछ अन्य व्यवहारों जैसे किसी समस्या के समाधान में किए गए या लगे समय पर ध्यान देना होता है। उसी तरह से जब जब हमें अदृश्य अनसीन सैद्धांतिक सप्रंग जैसे अधिगम संवेग एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना होता है, हम लोग इसे सीमित ढंग से अनुभव इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। उसी तरह से कहाँ तक हम लोग यथार्थ एवं वस्तुनिष्ठ मापन प्राप्त कर पाते हैं, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप आक्रामकता अग्रेसिवनेस तथा प्यार या स्नेह लव एक पर व्यवहार है जिसके मापने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापनी है। फलतः इसके लिए भी जो मापने का उपयोग किया जाता है वह न केवल आत्मनिष्ठ होता है बल्कि इसमें पूर्वाग्रह बायस तथा त्रुटि एरर सम्मिलित होता है। यह भी कहा जा सकता है कि हम लोग सभी व्यवहार के सभी पहलुओं का प्रेक्षण क्रम एवं नियंत्रित ढंग से नहीं कर पाते, जिससे भी वैज्ञानिक अध्ययन में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि अध्ययनकर्ता बच्चों के जन्मदिन के प्रति महिलाओं की मनोविज्ञान एटीट्यूड का अध्ययन करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में वह यह तथ्य कि प्रत्येक प्रयोज्य का महिला व्यक्तित्व है को इस तथ्य से कि प्रत्येक प्रयोज्य में एक स्त्री जीन फीमेल जीन तथा की शारीरिक रचना है जो भिन्न नहीं कर सकता, फलतः वह यह निश्चित नहीं कर सकता है कि दोनों कारकों में से कौन उसकी मनोवृत्ति को प्रभावित कर रहा है। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त परिसीमाओं के आलोक में तब यह कहा जा सकता है कि कुछ व्यवहारों का अध्ययन से हमें पूर्ण विश्वास कंप्लीट कॉन्फिडेंस उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं चल पाएगा कि हम लोगों द्वारा किया गया मापन मेजरमेंट व्यवहारों के बारे में क्या वो कह रहा है। दो, डिज़ाइन की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन। अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के लिए बनाया गया डिज़ाइन के बारे में लिया गया निर्णय से भी प्राप्त परिणाम विश्वास कॉन्फिडेंस कमता है। जैसे यदि कोई अध्ययनकर्ता दूरदर्शन देखने के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला परिस्थिति में प्रयोगशाला प्रयोग डिज़ाइन से करता है तो उसमें वास्तविक व्यवहार एक पूर्वग्रहित तस्वीर मिलता है, क्योंकि लोग प्रयोगशाला परिस्थिति में सामान्यतः दूरदर्शन नहीं देखते। उसी तरह से जिन प्रयोज्यों का अध्ययन किया जा रहा है, जिस ढंग से व्यवहार का मापन किया जाता है और जिस ढंग से कारकों को नियंत्रित किया जाता है या उसमें जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया जाता है, से अध्ययनकर्ता को एक पूर्वग्रहित सबूत बायस्ड एविडेंस प्राप्त होता है, जिससे वैज्ञानिक अध्ययन की वैधता कमती है। तीन, तकनीकी परिसीमाएं टेक्निकल लिमिटेशंस। कभी कभी अध्ययनकर्ता के पास किसी व्यवहार या कारक को सही सही मापने की तकनीकी क्षमता नहीं होती है। ऐसी अवस्था में किया गया शोध से सीमित एवं भ्रामक सूचनाएं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तर भाग लेटर पार्ट में मनोविज्ञान में कपाल विज्ञान फ्रोनोलॉजी का अध्ययन को सम्मिलित किया गया था। कपाल विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के आकार साइज और इस प्रकार से खोपड़ी के कुछ हिस्से पर के उभार पंप से व्यक्तित्वशील गुणों का पता चलता है। व्यक्तित्व एवं मस्तिष्क के संरचना के अध्ययन की वर्तमान विधियों को ध्यान में रखते हुए कपाल विज्ञान का अध्ययन हास्यपद लगता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कपाल विज्ञान का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों के वर्तमान तकनीकी क्षमता के बाहर है। पैराग्राफ चेंज। चार, अध्ययन का सीमित संदर्भ लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी। यद्यपि किसी विशेष अध्ययन से प्राप्त सबूत विश्वासोत्पादक कन्विंसिंग एवं सार्थक होता है, फिर भी एक अध्ययन परिणाम के आधार पर पूरी कहानी नहीं जानी जा सकती। सचमुच में कोई एक अध्ययन आशुचित्र सनस्पॉट स्नैपशॉट्स है जिनके आधार पर एक पूर्वाग्रहित दृष्टिकोण स्लैंटेड व्यू प्रकट होता है, जिसमें कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा कुछ कारकों की उपेक्षा की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इस तरह के मात्र एकाध अध्ययन से जो वैज्ञानिक सबूत साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त होते हैं वे दोषपूर्ण हो जाते हैं। सचमुच में इस समस्या से उत्पन्न तथ्य की तुलना उस पौराणिक कथा ओल्ड फेबल से किया जा सकता है, जिसमें कई नेत्रहीन लोग हाथी का वर्णन करते समय उसके द्वारा स्पर्श किया गया अंग से प्राप्त अनुभूति के अनुरूप किए। जिस व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को स्पर्श किया उसने हाथी को एक लंबे पाइप के आकार का बतलाया तथा जिसने हाथी के पैर को स्पर्श किया उसने हाथी को एक खंभा के रूप में वर्णन किया आदि आदि। अतः मात्र एक अध्ययन से प्राप्त तथ्य मात्र उन अनुभूति के समान है जो किसी एक नेत्रहीन व्यक्ति का था। चूंकि यह भी सत्य है कि एक अध्ययन में एक उपागम पर बल डाला जाता है, फलतः अन्य उपागम अपने आप ही छंट जाते हैं। अतः एक अध्ययन से प्रकृति नेचर के बारे में गलत अनुमान लगाया जाता है और प्राप्त परिणाम निश्चित रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं। ब, प्रकल्पना की जांच में दोष, फ्लॉस इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। मनोविज्ञान शोध में प्रकल्पना हाइपोथेसिस की जांच करने से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या नए ढंग से की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ आंकड़ों से प्रकल्पना हाइपोथेसिस की पुष्टि होती है जबकि अन्य आंकड़ों से प्रकल्पना की अपुष्टि इन डिसकन्फर्मेशन होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग उन सबूतों को ठीक से जांच करें जिसे वे प्राप्त किए गए हैं। प्रायः शोधकर्ता ऐसा नहीं करते जिसके परिणाम स्वरूप प्रकल्पना के जांच में दोष उत्पन्न हो जाता है और वैज्ञानिक शोध भी तब दोषपूर्ण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज, प्रकल्पना की जांच में दोष को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, क्या हम लोग इस प्रकल्पना को स्वीकार करते हैं कि स्वप्न से भविष्य का पता चलता है, ड्रीम्स प्रिडिक्ट फ्यूचर? अगर कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से यदा कदा ऐसा स्वप्न देखा है जो भविष्य में हुई घटनाओं का संकेत देता है, परंतु उन सबूतों के गुणवत्ता, क्वालिटी तथा मात्रा, क्वांटिटी जिनसे इस प्रकल्पना का समर्थन मिलता है पर ध्यान देना होगा। पहला, इस तरह का प्रकल्पना संवेदात्मक है क्योंकि यह न तो तर्कसंगत रैशनल है और न ही मितव्ययी पार्सिमोनियस है। दूसरा, व्यक्ति द्वारा किया गया स्वप्न का प्रत्याहन रिकॉल तथा व्यक्ति का यह सोच कि वह किस तरह वास्तविक घटना से मिलान खाता है एक आत्मनिष्ठ व्यवहार है जिस पर भी संदेह होता है। तीसरा, व्यक्ति प्रकल्पना हाइपोथेसिस की संपुष्टि कन्फर्मेशन पर विश्वास कर रहा है, अर्थात व्यक्ति का प्रेक्षण इस प्रकल्पना के साथ संगत है कि स्वप्न भविष्य के बारे में पूर्व कथन करता है। अब इन कमजोर सबूतों को प्राप्य अवेलेबल अपुष्टि के डिसकन्फर्मेशन के सबूतों के साथ मिलान करते हुए तौलने की ज़रूरत है। कितने बार व्यक्ति का स्वप्न सच नहीं हो पाया है। सबूतों की प्राप्तता व प्रकल्पना को कि स्वप्न भविष्य को बतलाता है अपुष्ट करता है। प्रकल्पना की संपुष्टि के लिए प्रस्तुत जो सबूत दिए गए हैं वे कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ संयोग वश हुए थे। पैराग्राफ चेंज, उपयुक्त तथ्यों का सारांश यह है कि किसी भी वैज्ञानिक प्रकल्पना में हम लोगों का विश्वास, कॉन्फिडेंस उन सबूतों की मात्रा, क्वांटिटी तथा गुणवत्ता, क्वालिटी पर निर्भर करता है जिससे उसकी पुष्टि कन्फर्मेशन या अपुष्टि डिसकन्फर्मेशन होती है। जैसे पुरस्कार अधिगम को मजबूर करता है, रिवॉर्ड फैसिलिटेट्स लर्निंग। एक ऐसी प्रकल्पना निश्चित रूप से है जिसकी संपुष्टि के लिए उपलब्ध सबूत अपुष्टि या वैकल्पिक प्रकल्पना के लिए उपलब्ध सबूत से भारी है। पैराग्राफ चेंज, चूंकि कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में इन दोनों तरह के पक्षों अर्थात प्रकल्पना की पुष्टि के सबूतों तथा प्रकल्पना की अपुष्टि के सबूतों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है, अतः प्रकल्पनाओं की जांच में दोष उत्पन्न हो जाता है। पैराग्राफ चेंज, अब यहाँ प्रकल्पना की जांच से संबंध एक प्रश्न अक्सर यह उठता है कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में विश्वास, कॉन्फिडेंस उत्पन्न करने के लिए कौन प्रविधि का सहारा अक्सर मनोविज्ञान द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर के रूप में यह कहा जाता है कि प्रकृति रेप्लिकेशन ही उत्तम प्रविधि है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रतिकृति रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अध्ययन को प्राकल्पना की जांच के लिए बार बार किया जाता है ताकि अध्ययनकर्ता इसके सच्चाई में विश्वास विकसित कर ले। प्रतिकृति के पीछे तर्क यह होता है चूँकि प्रकृति नेचर विधि सम्मत लॉफुल होता है इसलिए यह सतत कंसिस्टेंट होता है। कई बार जब अध्ययनों को दोहराया जाता है तो सही प्राकल्पना एवं प्रक्रियाएं सतत रूप से कंसिस्टेंटली समर्थित होती हैं जबकि गलत एवं असार्थक प्रकल्पनाएं अस्वीकृत होती हैं। सामान्यतः दो तरह के प्रतिकृति का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, आश्चर्यक प्रतिकृति लिटरल रेप्लिकेशन तथा संप्रत्यात्मक प्रतिकृति कंसेप्चुअल रेप्लिकेशन। आश्चर्यक प्रतिकृति में शोधकर्ता गत अध्ययन के विशिष्ट डिजाइन एवं परिणाम दोहराने की कोशिश करता है। अगर शोधकर्ता समान परिस्थिति में एक ही सबूत बार बार प्राप्त करता है तो वह इस विश्वास पर पहुंचता है कि प्राकल्पना सही ढंग से प्रकृति को बतला रहा है और इस ढंग की प्राकल्पना को यथार्थ समझा जाता है। संप्रत्यात्मक प्रतिकृति में शोधकर्ता प्राकल्पना को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने की कोशिश करता है और इसमें गत अध्ययन प्रीवियस स्टडी के डिज़ाइन से भिन्न डिज़ाइन का उपयोग करके प्राकल्पना की जांच करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से संप्रत्यात्मक प्रतिकृति के माध्यम से शोधकर्ता प्राकल्पना के सामान्य उपयोग में पहले से अधिक विश्वास व्यक्त करता है। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट हुआ है कि वैज्ञानिक शोध में कुछ कारणों से दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन पर शोधकर्ता को ध्यान देना आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक शोध के अर्थ एवं प्रकार मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है? इस प्रश्न पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो हम सामान्यतः इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए गए सभी तरह के शोधों रिसर्चेस को मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। डीएमेटो 1970 ने मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को परिभाषित करते हुए कहा है, मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को रखा जाता है। इस तरह से मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी आदि में किए गए सभी तरह के शोध, चाहे वे प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल हों या अप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल हों, मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहलाते हैं। प्रोग्राम पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को मूलतः दो विस्तृत भागों में बांटा है, सैद्धांतिक शोध थ्योरेटिकल रिसर्च, ब अनुभविक शोध एम्पेरिकल रिसर्च। इन दोनों तरह के शोधों का वर्णन निम्नलिखित है, सैद्धांतिक शोध थ्योरेटिकल रिसर्च। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सैद्धांतिक शोध से तात्पर्य उन सभी तरह के शोधों से होता है जिसका संबंध मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत थियरी के निर्माण एवं विकास से होता है। इस तरह के सैद्धांतिक शोध को मनोवैज्ञानिकों ने दो मूल भागों में बांटा है, एक पुस्तकालय शोध लाइब्रेरी रिसर्च तथा दो सिद्धांत रचना थियरी कंस्ट्रक्शन। पुस्तकालय शोध लाइब्रेरी रिसर्च या जिसे पुरालेख शोध आर्काइवल रिसर्च भी कहा जाता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी तथा शिक्षा एजुकेशन में एक सामान्य शोध कॉमन रिसर्च है। पुस्तकालय शोध जैसे शोध को कहा जाता है, इसमें शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों डेटा का संग्रहण कलेक्शन नहीं करता बल्कि आनुभाविक नियमों एम्पेरिकल प्रिंसिपल अनुकूल शोध समस्या प्रॉब्लम से संबंधित आंकड़ों को समन्वित करता है या अनेक तरह के असदृश आंकड़ों डाइवर्सिफाइड डेटा को मिलाकर उसमें छपे अर्थ को निकालता है तथा सामान्यकरण या सामान्यमान जनरलाइजेशन करता है। पुस्तकालय शोध में समस्या से संबंधित सभी तरह के आंकड़ों का विस्तृत मूल्यांकन ब्रॉड एवेल्युएशन एवं अध्ययन किया जाता है ताकि सामान्यमान जनरलाइजेशन गलत न हो सके। उदाहरणार्थ सीखना लर्निंग की में तरह तरह के आंकड़ों डेटा एवं तथ्यों फैक्ट्स का गहन अध्ययन कर वो शोधकर्ता एक सामान्यकरण या सामान्यानुमान पर पहुंच सकता है। ये सीखने की प्रक्रिया सीखे गए विषय की सार्थकता मीनिंगफुलनेस पर निर्भर करती है या सार्थक विषय को व्यक्ति असार्थक विषय की अपेक्षा जल्द सीख लेता है। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक गण आत्महत्या सुसाइड तथा नरहत्या होमोसाइड जैसे विषयों का अध्ययन पुस्तकालय शोध करके ही करते हैं क्योंकि ऐसे विचारों अध्ययन करने के लिए उनके पास और कोई उपयुक्त विधि नहीं है। पैराग्राफ चेंज सिद्धांत रचना थियरी कंस्ट्रक्शन डैश सैद्धांतिक शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार है। सिद्धांत रचना में शोध का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्रों की खास समस्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के स्वरूप को स्पष्ट करने के ख्याल से सिद्धांत थियरी की रचना करना होता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों की रचना की गई थी वे बहुत कुछ अनौपचारिक इनफॉर्मल थे तथा उनके उच्चरों वेरिएबल्स को ठीक ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता था और न ही उन वास्तविक संबंधों रिलेशनशिप को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। पूर्णविराम उदाहरण के रूप में विल्हेम उंड द्वारा प्रस्तावित भाव का त्रिविमीय सिद्धांत थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग हल द्वारा प्रस्तावित रटकर सीखने रोट लर्निंग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग तथा कुछ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थियोरीज इसी तरह के अनौपचारिक सिद्धांत थियोरी के उदाहरण हैं। आजकल ऐसे सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में न के बराबर की जा रही है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिकतर वैसे सिद्धांतों की रचना की जा रही है जो अधिक औपचारिक फॉर्मल तथा गणितीय मैथमेटिकल होते हैं एवं जिनमें चरों वेरिएबल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है तथा उसमें एक खास ढंग से संबंधित रिलेशनशिप की व्याख्या पर अधिक बल डाला जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें सूचना संसाधन सिद्धांतों इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरीज में मिलता है जिसमें विभिन्न तरह के कंप्यूटर मॉडल पर आधारित सिद्धांत सीखने के क्षेत्र में एस्टिस का उद्दीपन प्रतिदर्श मॉडल स्टिमुलस सैम्पलिंग मॉडल इस तरह के सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण है। वह आनुभाविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च आनुभाविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च किसे कहते हैं इस प्रश्न पर विचार करने के से पहले यह बतला देना उचित होगा कि आनुभाविक एम्पिरिकल पद टर्म का अर्थ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तथा शैक्षिक एजुकेशनल शोध रिसर्च में क्या होता है। मनोविज्ञान में आनुभाविक पद का प्रयोग 6 विभिन्न अर्थों में किया गया है। शोध में इस पद का अर्थ उन विधियों प्रोसीजर्स से होता है जो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होते हैं तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन फैक्चुअल इवैल्यूएशन पर आधारित होते हैं। स्वभावतः तब आनुभाविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसका स्वरूप प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होता है तथा जिनकी विधियां समस्या प्रॉब्लम का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन फैक्चुअल इवैल्यूएशन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने आनुभविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च के निम्नांकित तीन प्रकार बतलाए हैं, ए प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, बी सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च, सी प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन तीनों का वर्णन निम्नांकित है, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल शैक्षिक एजुकेशनल तथा समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल शोध में प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन प्रमुख शोध का एक प्रकार है। शिक्षण वैसे शोध को प्रेक्षण वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों वेरिएबल्स में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किए ही अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है, उसके महत्वपूर्ण तत्वों को लिखते जाता है और उसका एक अभिलेखन या रिकॉर्ड तैयार करता है। अभिलेखन या रिकॉर्ड किए गए व्यवहारों का विश्लेषण कर शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि यदि कोई शोधकर्ता खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है करना चाहता है तथा उनके समूह व्यवहार के बारे में कुछ जानना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में वो चुपचाप वहीं बैठकर बच्चों द्वारा दिखाए गए महत्वपूर्ण भावों फीलिंग्स संवेगों इमोशंस तथा अन्य व्यवहारों का ब्यौरा तैयार करता जाएगा। इस ब्यौरा के विश्लेषण के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि खेल के मैदान में कुछ बच्चे आक्रमणकारी व्यवहार अग्रेसिव बिहेवियर अधिक करते हैं तथा कुछ बच्चे ऐसे व्यवहार कम करते हैं। समूह का नेतृत्व लीडरशिप उन्हीं बच्चों के हाथ में होता है जो आक्रमणकारी व्यवहार अधिक दिखलाते हैं। इससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बच्चों में समूह नेतृत्व ग्रुप लीडरशिप तथा आक्रमणकारी व्यवहार अग्रेसिव बिहेवियर धनात्मक सहसंबंध होता है। प्रेक्षक व ऑब्जर्वर की इस भूमिका पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन भूमिका रोल को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह का असहभागी प्रेक्षण नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन का उदाहरण है, क्योंकि समूह के खेल व्यवहार में प्रेक्षक खुद हाथ नहीं बटा रहा है। इसके विपरीत कुछ प्रेक्षण ऐसे होते हैं जिनमें प्रेक्षक प्रायः अपना परिचय छिपाकर समूह के व्यवहारों में या समूह द्वारा किसी समस्या के समाधान में खुद भी हाथ बटाता है तथा साथ ही साथ समूह के सदस्यों के व्यवहारों का निरीक्षण भी करता जाता है। इसी सहभागी प्रेक्षण पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रेक्षण के दो प्रकार बतलाए गए हैं, एक स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरल ऑब्जर्वेशन, दो प्रयोगशाला प्रेक्षण लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरल ऑब्जर्वेशन से तात्पर्य वैसे प्रेक्षण से होता है जिसमें घटनाओं या व्यक्तित्वों के व्यवहारों का प्रेक्षण किसी स्वाभाविक परिस्थिति नेचुरल सिचुएशन जैसे स्कूल कॉलेज रेलवे प्लेटफॉर्म बस अड्डा खेल का मैदान आदि में किया जाता है। DMATO के 1970 के अनुसार जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में प्रेक्षक द्वारा बच्चों के खेल व्यवहार का निरीक्षण खेल के मैदान में करके एक निश्चित निष्कर्ष ऐसे जैसे आक्रात्मकता तथा नेतृत्व लीडरशिप में धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन है पर पहुंचना एक स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरल ऑब्जर्वेशन का उदाहरण है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरल ऑब्जर्वेशन के दो प्रमुख दोष डेमेरिट्स बतलाए गए हैं। पहला दोष तो यह है कि स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षक के सामने बहुत सारे ऐसे चर वेरिएबल्स मौजूद रहते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता और जो प्रेक्षण की प्रक्रिया को अधिक जटिल बना देता है और प्रेक्षक के लिए किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। जैसे खेल के मैदान में ही यदि कोई मदारी बंदर नाचने के लिए अपने डमरू पर चोट मारना शुरू कर देता है तो संभव है कि बच्चे खेल में दिलचस्पी कम लेना शुरू कर दे और बंदर के नाच की ओर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दे। ऐसी परिस्थिति में प्रेक्षक को खेल व्यवहार के प्रेक्षण के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा दोष यह बतलाया गया है कि स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेक्षक को उस समय तक इंतजार करना पड़ता है जब तक घटना स्वाभाविक परिस्थिति में स्वयं घटित न हो। जैसे उपयुक्त उदाहरण में प्रेक्षक बच्चों के खेल व्यवहार का प्रेक्षण तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि बच्चे अपनी स्वेच्छा से खेल मैदान में खेलने के लिए तैयार नहीं हों। पूर्ण विराम।